नमस्कार, आज हम अखंड ज्योति पत्रिका के सितंबर 1980 के अंक में प्रकाशित पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही विशेष उद्बोधन पर बात करेंगे। इसका शीर्षक था जीवन को धन्य बनाने का महानतम अवसर। ये उद्बोधन शांति कुंज में दिया गया था और पूज्य गुरुदेव ने इसकी शुरुआत गायत्री मंत्र से की थी। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आज की चर्चा का केंद्र है वो खास समय जिसे पूज्य गुरुदेव ने युग संधि कहा, मतलब दो युगों के मिलने का समय, एक बड़े बदलाव का निर्णायक दौर। और इस खास समय में हम सबके लिए जीवन को सार्थक बनाने का एक अनोखा अवसर कैसे है, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए इस उद्बोधन की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि पूज्य गुरुदेव का मुख्य संदेश क्या था।
जी, तो पूज्य गुरुदेव ने उस समय यानी 1980 से लेकर अगले 20 वर्षों को बड़े उथल पुथल और महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल बताया था। उन्होंने इसे महाकाल की तैयारी कहा और इसे 24वां और अंतिम प्रज्ञावतार माना गया। हाँ, प्रज्ञावतार यानी बुद्धि और विवेक को जगाने वाला ईश्वरीय अवतरण जो नया युग लाएगा। और गुरुदेव ने इस पर बहुत जोर दिया कि ये सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं है।
अच्छा।
हाँ, इसे महाकाल के मतलब स्वयं ईश्वर के शब्द समझा जाना चाहिए। ये एक तरह से पुराने जो अनुपयोगी विचार हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनके अंत का और नई संभावनाओं के उदय का समय था।
तो ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं थी बल्कि एक तरह से वर्तमान में सक्रिय होने का, कुछ करने का आह्वान था।
हाँ।
और इसमें हम जैसे सामान्य व्यक्ति की क्या भूमिका थी?
हाँ हाँ, बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट किया कि ऐसे समय में सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। देखिए, भगवान का अवतार तो निराकार होता है, बिना रूप के, पर उसकी जो शक्ति है वो जागृत आत्माओं मतलब हम जैसे साकार शरीर वाले लोगों के माध्यम से ही काम करती है। प्रेरणा है, प्रकाश है, मार्गदर्शन है, वो तो निराकार से मिलता है, पर जमीन पर काम वो तो साकार को हमें ही करना होता है। जैसे प्राण निराकार है पर शरीर उसका साकार माध्यम है।
अच्छा, यानी ये ईश्वरीय योजना में भागीदार बनने का एक अवसर था। ये तो बहुत बड़ी बात लगती है।
है ही। और पूज्य गुरुदेव ने इसे परम सौभाग्य कहा, बहुत बड़ा सौभाग्य। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाली पीढ़ियां ऐसे लोगों को गर्व से याद करेंगी जिन्होंने इस बड़े बदलाव में भगवान का हाथ बटाया। और युग निर्माण परिवार के जो सदस्य थे उनके लिए तो उन्होंने कहा कि ये वो विशेष लोग हैं जिन्हें महाकाल ने मानो चुनकर निकाला है।
चुनकर निकाला है,
हाँ, इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए।
लेकिन आम तौर पर तो हम देखते हैं कि लोग चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अपनी रोजमर्रा की जरूरतें, परिवार, बस इसी में सीमित रह जाते हैं। परमार्थ या आत्मा की उन्नति, इसकी चिंता कम ही लोग करते हैं। इस बारे में गुरुदेव ने क्या कहा?
बिल्कुल, उन्होंने इसी आम सोच पर, इसी मानसिकता पर चोट की। कहा कि ज्यादातर लोग बस पेट भरने और संतान पैदा करने में ही पूरा जीवन लगा देते हैं, आत्मा की कोई चिंता नहीं। और उन्होंने इस धारणा को भी गलत बताया कि भगवान प्रसन्न होकर खूब धन दौलत देते हैं। ये सोच गलत है।
अच्छा, ये तो काफी अलग बात है।
हाँ, बल्कि उनका कहना था कि जो भगवान के ज्यादा नजदीक होते हैं, जो उनके काम के लिए चुने जाते हैं, उन्हें अक्सर सांसारिक मोह माया से कुछ अलग रखा जाता है ताकि वो हिम्मत जुटा सकें, साहस कर सके भगवान का काम करने का और उसका श्रेय पाएं। गुरुदेव ने साफ कहा, एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी, या तो ये पकड़ लो या वो।
ये विचार कि भगवान अपने करीबियों को भौतिक सुख से शायद थोड़ा दूर रखते हैं ताकि वो बड़ा काम कर सकें, ये कुछ लोगों को कठिन लग सकता है। क्या इसका मतलब था कि आध्यात्मिक रास्ते पर भौतिक सुख बिल्कुल ही वर्जित है?
नहीं, शायद वर्जित कहना ठीक नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि सुख नहीं होना चाहिए, पर उसकी जो आसक्ति है, जो पकड़ है, वो बाधक बन सकती है। गुरुदेव का जोर इस बात पर था कि सांसारिक मोह जब कम होता है तो व्यक्ति ज्यादा साहस से, ज्यादा निष्ठा से परमार्थ के काम में लग सकता है ना?
सही बात है।
तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने युग संधि की उस विशेष वेला में, उस घड़ी में संपत्ति जोड़ने और केवल वंश बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है उसे काबू में रखने का आग्रह किया। उनकी पुकार खासकर उन लोगों से थी जो जागरूक हैं, जो जागे हुए हैं, क्योंकि सोए हुए को जगाना तो मुश्किल है। यहां तक कि जो लोग अध्यात्म के नाम पर सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए पूजा पाठ करते हैं उनको भी उन्होंने एक तरह से सोया हुआ ही माना।
तो इस जागरण के लिए उस युग संधि काल के विशेष कर्तव्यों के लिए उन्होंने क्या ठोस कदम सुझाए, क्या करने को कहा?
हाँ, उन्होंने तीन प्रमुख उत्तरदायित्व बताए, बिल्कुल साफ साफ। पहला था युग संधि महापुरश्चरण।
महापुरश्चरण,
हाँ, यानी एक निष्ठापूर्ण उपासना, रोज कम से कम 5 माला गायत्री मंत्र का जप, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए और विश्व कल्याण की भावना से। दूसरा, प्रज्ञा संदेश का प्रसार, यानी ये जो नया युग आ रहा है, ये जो प्रज्ञावतार है, इसके संदेश को हर गांव, हर शहर, हर घर तक पहुंचाना। इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों से परिव्राजक बनने का भी आह्वान किया।
परिव्राजक मतलब जैसे साधु संत घूमते हैं?
हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब घर बार छोड़कर नहीं, पर अपना समय निकालकर घूम घूमकर लोगों को जगाना, संदेश देना, समय दान करना। और तीसरा था, हर गांव में चरण पीठ या ग्राम तीर्थ की स्थापना।
चरण पीठ,
ये क्या था?
ये सिर्फ कोई मंदिर या इमारत नहीं थी।
हाँ।
ये ऐसे केंद्र बने जहाँ गांव के लोग मिलकर बैठें, योजना बनाएं, सामूहिक काम करें, गांव की प्रगति के बारे में सोचें।
गुरुदेव ने उस समय इसकी अनुमानित लागत भी बताई थी, करीब 6-7 हजार रूपए। और मध्य प्रदेश के एक भील भाई का उदाहरण दिया था, जिसने इसके लिए अपनी जमीन दान दे दी थी।
अच्छा।
हाँ, इससे वो यही दिखाना चाहते थे कि सामूहिक प्रयास और खुद आगे बढ़कर पहल करना कितना जरूरी है, इंतजार नहीं करना किसी का।
यानी सिर्फ पूजा पाठ या जप ही काफी नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन बनाना, सक्रिय होना, काम करना भी उतना ही जरूरी था।
बिल्कुल बिल्कुल, पुरुषार्थ पर, मतलब सक्रिय प्रयास पर, मेहनत पर बहुत जोर था। उन्होंने साफ कहा कि भाई, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, कीमत चुकानी पड़ती है।
कीमत? किस तरह की कीमत?
अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि, अपना धन, ये सब भगवान के काम में लगाना है, यही कीमत है। और धन इकट्ठा करने के बजाय बस गुजारे लायक रखें, बच्चों को धन देने की ना सोचें, उन्हें अच्छे संस्कार दें, वही असली धन है।
और इसी से जुड़ा हुआ उनका ब्राह्मण और संत बनने का आह्वान भी था, है ना? वो थोड़ा समझाएंगे।
हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि अपने अंदर के चांडाल को निकालो। चांडाल मतलब वो प्रवृत्ति जो हमें बुरे कामों की तरफ खींचती है। और अंदर के बनिया को भी निकालो। बनिया मतलब वो जो सिर्फ अपना फायदा देखता है, कंजूसी करता है समाज के लिए कुछ देने में।
अच्छा।
इन दोनों को निकालकर अपने अंदर ब्राह्मण और संत को जगाओ। अब यहाँ ब्राह्मण का मतलब किसी जाति से बिल्कुल नहीं था।
हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है।
बिल्कुल, ब्राह्मण मतलब वो व्यक्ति जो किफायत से, सादगी से जीता है और अपना समय, अपने साधन समाज के लिए लगाता है, समाज के लिए सोचता है। और संत मतलब वो जो अपना जीवन ही समर्पित कर दे, खासकर जब घर परिवार की जिम्मेदारियां कुछ कम हो जाएं। ऐसे लोगों को परिव्राजक बनकर समाज को दिशा देनी चाहिए।
और जिनके पास गुजारे की व्यवस्था तेजी से है, उनसे समयदान के साथ साथ एक और बड़ी अनूठी बात कही थी आपने, बताया ज्ञान घट की, वो क्या था?
हाँ, ज्ञान घट, ये गुरुदेव की एक बहुत ही व्यावहारिक और अद्भुत सोच थी। उन्होंने दक्षिणा के रूप में ज्ञान घट स्थापित करने को कहा। हर घर में एक मिट्टी का बर्तन हो, एक घट, और उसमें रोज सिर्फ 10 पैसे डालने, उस समय के हिसाब से 10 पैसे।
10 पैसे?
हाँ, रोज। और इस तरह जो पैसा इकट्ठा हो, उससे युग परिवर्तन के जो काम हैं और जो समाज के लिए जीने वाले ब्राह्मण हैं, मतलब वो समाज सेवी, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी की जा सकें। ये एक तरह से लोक सहभागिता थी।
तो कुल मिलाकर देखें, पूज्य गुरुदेव का संदेश बहुत ही स्पष्ट और सीधा था कि ये जो युग संधि का विशेष समय है, ये व्यक्तिगत लाभ और चीजें इकट्ठी करने से ऊपर उठकर समाज के लिए, ईश्वर के काम के लिए कुछ करने का एक सुनहरा मौका है। और इसके लिए तीन मुख्य काम बताए, महापुरुष चरण, चरण पीठ स्थापना और ये ब्राह्मण संत परंपरा को अपनाना। उन्होंने कहा कि इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए, खुद पहल करनी है और दूसरों को भी जगाना है।
जी बिल्कुल, ये उद्बोधन भले ही 1980 के संदर्भ में कुछ तात्कालिक कर्तव्यों की बात करता है, लेकिन ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। ये जो विचार है कि सांसारिक मोह से, अपनी चीजों की पकड़ से थोड़ा ऊपर उठकर समाज के लिए जीना, क्या ये सिर्फ उस विशेष काल के लिए ही प्रासंगिक था, या इसमें जीवन को किसी भी समय में, आज भी, एक उद्देश्य देने का, सार्थक बनाने का एक शाश्वत संदेश छिपा है? शायद व्यक्तिगत स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठना ही, समाज के लिए कुछ करना ही, जीवन को सही मायने में धन्य बनाता है। ये एक विचारणीय प्रश्न है। चलिए अब शांति पाठ के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही, शांति ही, शांति।